प्रिंस के वीडियो शेयर करने के बाद आयशा की सब जगह थू-थू होने लगी थी और उसका असली चेहरा सबके सामने आ गया था। आयशा का सच सामने आने के बाद उर्वशी ने नक्श और आयशा की सगाई तोड़ दी थी। उसने गुस्से में आयशा का हाल बेहाल कर दिया था। आयशा रोते हुए सिंघानिया विला में पहुंची। उसके बाल बिखरे हुए थे और रोने की वजह से मेकअप भी खराब हो गया था। उर्वशी के प्लेट फेंकने की वजह से उसके पैर पर एक टुकड़ा आकर लगा था, जिससे हल्का खून भी निकल रहा था। आयशा के घर पर आते ही आदर्श ने उसे देखा। वो कॉल पर बात कर रहे थे। उसने ठीक से आयशा की तरफ ध्यान नहीं दिया और कॉल कट करके मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आते हुए बोला, बहुत जल्दी नहीं आ गई तुम, मुझे लगा कि तुम्हें आने में रात हो जाएगी। वैसे आज का ब्रेकफास्ट कैसा रहा? क्या तुमने नक्श की बड़ी दादी को मना लिया? क्या वो तुम्हें शेयर देने के लिए तैयार हो गई? बोलते हुए आदर्श आयशा के पास आए और उन्होंने ठीक से उसे देखा तो वो हैरान रह गए। आयशा की आंखों में आंसू थे और उसका हाल ठीक ना देखकर आदर्श ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और परेशान स्वर में कहा, आयशा बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी ये हालत किसने की है? आयशा ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस वो रोए जा रही थी। उसे इस तरह देखकर आदर्श परेशान हो गए। उसने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, राधिका राधिका तुम कहाँ हो? जल्दी नीचे आओ, देखो आयशा को क्या हो गया है, वो कुछ बोल क्यों नहीं रही? राधिका ऊपर आराम कर रही थी। उसके कानों में आदर्श की आवाज पड़ी तो वो श्रुति की हेल्प से नीचे आई। उसने देखा आदर्श ने आयशा को सोफे पर बिठाया और खुद उसके सामने जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। आदर्श ने आयशा से गुस्से में कहा, इनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की? ये राजवंश फैमिली ने किया है ना, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं अभी वहां जा रहा हूँ, उन्हें मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। आदर्श गुस्से में खड़ा हुआ और उठकर जाने को हुआ। तभी आयशा ने कहा, रुक जाइए डैड, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, प्लीज वापस आ जाइए। आयशा की बात सुनकर आदर्श के कदम वहीं पर रुक गए थे। वो आयशा की तरफ पलटे और हैरानी से सिर हिलाकर कहा, तो फिर क्या हुआ है, मुझे ठीक से बताओ। आयशा जवाब में कुछ बोलती उससे पहले राधिका वहां पहुंच चुकी थी। उनकी तबीयत बेहतर नजर आ रही थी। उन्होंने सख्ती से आयशा की तरफ देखा और उसी अंदाज में कहा, क्या ये सब ट्विटर के ट्रेंडिंग टॉपिक की वजह से हो रहा है? राधिका की बातों से साफ था कि ट्विटर पर जो भी हो रहा था उस बारे में वो अनजान नहीं थी। आयशा ने अपनी नजरें नीचे की और पहले जोर जोर से रोने लगी, फिर उसने सुबकते हुए कहा, आप भी मुझे सबकी तरह गलत समझ रही हैं ना, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। माहिर अपने डैड को मारकर मेरे पास आया था, मैं बहुत घबरा गई थी, मुझे सच में डर लग रहा था कि वो मुझे भी मार देगा, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह पाई। ऐसा लग रहा था जैसे राधिका आयशा की बातों से संतुष्ट नहीं हुई थी। उन्होंने सिर हिलाकर कहा, पहले उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा, लेकिन उसके पकड़े जाने के बाद तुमने पुलिस से झूठ क्यों बोला? तुमने कहा कि सबूत तुमने पुलिस तक पहुंचाए थे, जबकि ये तो किसी रिपोर्टर का काम था। क्योंकि मैं मजबूर थी, नक्श को लगा कि ये सब मैंने ही किया है, उसके बाद वो मेरे साथ अच्छा बिहेव करने लगा तो मैंने सच नहीं बताया। आप समझती क्यों नहीं है, मैं नक्श से बहुत प्यार करती हूँ, अगर उसे सच पता चलता तो वो मुझे छोड़ देता, बस इसीलिए मैंने कुछ नहीं बताया। मुझे नहीं पता था इस छोटी सी बात को और राजवंश फैमिली इतना बढ़ा चढ़ाकर मीडिया में वायरल कर देगी, आयशा ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसने फिर से झूठ बोला और हमेशा की तरह मासूम बनने का दिखावा किया। इतनी बड़ी कहानी सुनाने के बाद भी राधिका के चेहरे पर वही सख्ती थी। उन्होंने कोल्ड वॉइस में कहा, तुम अभी भी बहाने बना रही हो, सच सामने आ गया है, ऐसे झूठ बोलना बंद करो। आयशा का झूठा राधिका के सामने पकड़ा गया था। उसने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, इन सबको जाने दो मॉम, अभी ये बात करने का टाइम नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए मॉम, उन्होंने शादी तोड़ दी है, मैं नक्श के बिना नहीं रह पाऊंगी। मैं जानती हूँ कि आपके पास में कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा, प्लीज उनसे जाकर बात कीजिए, मैं मर जाऊंगी नक्श के बिना। आयशा को लगा कि उसके इस ड्रामे से राधिका पर कोई असर होगा, लेकिन राधिका ने बेरुखी से कहा, तो उन्होंने सगाई तोड़ दी है, कोई बात नहीं, अब तुम घर पर रहो, पहले मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं ठीक से तुम्हें बड़ा नहीं कर पाई, लेकिन अब मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारा अच्छे से देखभाल करूंगी और तुम्हें हर एक चीज सिखाऊंगी। वहीं पूरा मामला समझने के लिए आदर्श ने ट्विटर पर सब कुछ देखा। उसने राधिका को समझाते हुए कहा, राधिका तुम कुछ ज्यादा ही सख्त हो रही हो, अभी ये बच्ची है और इसे सही गलत का ठीक से नहीं पता है, ये छोटी सी बात है, आज सब बात कर रहे हैं और कल भूल जाएंगे। राधिका ने तिरछी निगाहों से आदर्श की तरफ देखते हुए कहा, आदर्श आपकी वजह से ये इतनी बिगड़ी है, आप इसकी गलत हरकतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अब से ये नहीं चलेगा, मैं आज से और अभी से इसके किसी भी गलत बात को इग्नोर नहीं करने वाली हूँ और इसे उसके लिए सजा मिलेगी। राधिका के कहते ही आयशा ने रोते हुए कहा, हाँ मैंने की है गलती, क्योंकि कोई मुझसे प्यार से बात करने वाला ही नहीं है, जब भी आपके पास आकर आपको कुछ बताया आप प्यार से समझाने के बजाय मुझे डांटने लगती हैं, आज भी आप वही कर रही हैं। आयशा ने राधिका और आदर्श को कुछ कहने का मौका नहीं दिया और भागकर ऊपर जाने लगी। वहीं कुछ देर में बाहर से एक हाउस हेल्पर दौड़ते हुए आया। उसने आदर्श से कहा, सर वो आयशा बेबी ऊपर फोर्थ फ्लोर के टेरेस पर चढ़ी हुई है, मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं। हाउस हेल्पर की बात सुनकर आदर्श और राधिका जल्दी से गार्डन एरिया में गए तो उन्होंने देखा आयशा उनके विला के फोर्थ फ्लोर की रेलिंग पर चढ़ी हुई थी। आयशा को वहां देखकर राधिका के कदम लड़खड़ाने लगे, उसकी आंखें नम हो रही थी। तभी आयशा ने ऊपर से चिल्लाकर कहा, मॉम मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप अभी मेरे लिए राजवंश विला में जाकर बात करेंगी, मुझे किसी भी हाल में नक्श से शादी करनी है, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से कूद जाऊंगी। आयशा को कहीं न कहीं अंदाजा हो गया था कि राधिका की पोजीशन क्या है, उसे ये इस बात से ही समझ आ गया था जब मित्तल फैमिली उसे देखकर आयशा की गलतियां तक भुलाने के लिए तैयार हो गई थी। आयशा ने राधिका की तरफ देखा और आगे कहा, मॉम मैं जानती हूँ कि आप ये कर सकती हैं, प्लीज मेरे लिए एक बार मेरी हेल्प कर दीजिए। आयशा राधिका की इकलौती बेटी थी, वो उसे बहुत प्यार भी करती थी और इस वक्त आयशा को ऊपर उस हाल में देखकर एक पल के लिए वो घबरा गई थी, लेकिन अचानक ही वो उस इमोशन से बाहर निकल आई थी। राधिका के चेहरे के भाव सख्त थे और उन्होंने आयशा की तरफ देखकर तेज आवाज में कहा, ठीक है तो फिर कूद जाओ। आयशा उनकी बात सुनकर हैरान रह गई थी, उसे लगा कि उसके इस तरह ड्रामा करने पर राधिका मान जाएगी। आयशा ने आगे कहा, तुम ज्यादा ऊपर नहीं हो आयशा, वहां से नीचे गिरी तो तुम्हारी कुछ हड्डियां टूट जाएगी और हो सकता है कि तुम्हें उम्र भर व्हीलचेयर पर रहना पड़े, लेकिन सिंघानिया फैमिली की भी इतनी हैसियत है कि वो अपनी हैंडीकैप्ड बेटी को संभाल सके। आदर्श ने तुरंत राधिका को समझाते हुए कहा, ये तुम क्या बोल रही हो राधिका, मैं जानती हूँ कि तुम गुस्सा हो, पर इस तरह इमोशनल होकर कुछ भी मत बोलो, वो बेटी है हमारी। बोलते हुए आदर्श ने ऊपर आयशा की तरफ देखा और फिर तेज आवाज में कहा, आयशा हम बैठकर इस मामले में डिसीजन लेते हैं, तुम चुपचाप नीचे आओ फिर बात करते हैं। मत रोकिए इसे आदर्श, इसे राजवंश फैमिली की पावर और पोजीशन की इतनी भूख हो गई है कि ये सही गलत भी नहीं सोचती है, तो इसका यहाँ से कूदना ही ठीक है, राधिका ने गुस्से में जवाब दिया।
एक पल के लिए वहाँ बिल्कुल सन्नाटा छा गया था, फिर आयशा ने कहा, ठीक है मैं कूद जाती हूँ और जानती हूँ कि यहाँ से कूदने पर मेरी जान नहीं जाएगी, लेकिन इस वक्त मैं प्रेग्नेंट हूँ मॉम और मेरे पेट में नक्श का बच्चा है, मुझे तो कुछ नहीं होगा लेकिन उस बच्चे का क्या, उस मासूम की तो कोई गलती नहीं है ना। राधिका और आदर्श हैरानी से आयशा की तरफ देख रहे थे, इस बार आयशा का तीर निशाने पर लगा था। उसने आगे कहा, मॉम प्लीज मेरी ना सही, मेरे बच्चे की सोचिए, मैं नक्श से उसकी प्रॉपर्टी के लिए नहीं बल्कि इस बच्चे के लिए शादी करना चाहती हूँ, मैं एक सिंगल मदर बनकर नहीं रहना चाहती और ना ही मेरा बच्चा बिना बाप के बड़ा होगा। पूरी बात जानने के बाद आदर्श ने कहा, राधिका आप समझ भी जाओ, तुम्हें इतना रूढ़ नहीं होना चाहिए, हमारी बच्ची है वो, बैठकर बात करते हैं। राधिका एक पल के लिए खो गई थी, आज आयशा जिस जगह पर खड़ी थी वहां किसी वक्त में वो थी। आयशा ने अपना ड्रामा जारी रखा, वो बार बार नक्श से प्यार करने की बात कह रही थी, इस बीच उसने इशिका को भी बीच में घसीट लिया था। आयशा के साथ में आदर्श भी राधिका को समझने में लगे थे, आखिरकार राधिका को हार माननी पड़ी, ऊपर से आयशा उसकी इकलौती बेटी थी। ठीक है मैं तैयार हूँ, नीचे आओ बात करते हैं, राधिका ने नम आंखों से जवाब दिया। आयशा उनकी बेटी थी तो वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी, वहीं आयशा भी अपने मकसद में कामयाब हो गई थी तो वो भी नीचे आ गई थी। सुबह के नाश्ते के बाद अभिमन्यु ऑफिस चला गया था, लंच इशिका और वसुधा ने साथ में किया था। कुछ देर आराम करने के बाद बस इशिका वसुधा को अपने साथ वॉक कराने के लिए गार्डन एरिया में लेकर आई थी। जब इशिका वसुधा के साथ टहल रही थी तो उन्होंने किसी को आपस में फुसफुसाकर बातें करने की आवाज़ सुनी। वहां काम कर रहे गार्डनर ने दूसरे से कहा, अजीब बेशरम लड़की है, सुबह इतना सब कुछ हुआ था उसके बाद भी इसकी यहाँ वापस आने की हिम्मत भी कैसे हो गई, साथ में अपनी माँ को भी खसीट लिया जो कितनी बीमार लग रही है, उर्वशी मैडम ने इन्हें अंदर आने से मना कर दिया इस वजह से ये दरवाजे पर ही खड़ी है, कितनी बीमार लग रही है, मुझे तो डर लग रहा है कि उनकी तबीयत और ख़राब ना हो जाए, दूसरे ने जवाब दिया। आयशा ने अपनी ज़िद के चलते राधिका को राजवंश विला में आने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन उर्वशी भी अपनी ज़िद की पक्की थी, उसने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया, इस वजह से वो दोनों गार्डन एरिया में खड़े थे। उन्हें वहां देखकर काम करने वाले हाउस हेल्पर उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगे। इशिका को समझ नहीं आया वो किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसने अभी तक आयशा और राधिका को देखा नहीं था। इशिका जल्दी से उनके पास गई और उनसे पूछा, तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो? हम आयशा सिंघानिया और उनकी माँ राधिका सिंघानिया के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले वो यहाँ आए थे लेकिन उर्वशी मैडम ने उन्हें अंदर नहीं घुसने दिया, वो अभी तक यहाँ उनके आने का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो वापस आकर उन्हें अंदर आने देगी, जबकि हम अच्छे से जानते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाउस हेल्पर ने जवाब दिया। इशिका ने गहरी सांस ली और मन ही मन कहा, आयशा क्या तुम्हें बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, तुम इतनी बुरी कैसे हो सकती हो, तुमने अपने झूठ के जाल में मिसेस सिंघानिया को भी बेवजह घसीट लिया है। इशिका ने वसुधा की तरफ देखा और कहा, दादी क्या आप? वसुधा पहले ही समझ गई थी कि इशिका क्या कहना चाहती है, इसलिए उसने उसकी बात काटते हुए बीच में कहा, तुम चिंता मत करो और जाकर उन्हें देखो, मैं निवेदिता के साथ अंदर चली जाऊंगी। इशिका ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया, वैसे भी वसुधा अपने घर में थी इसलिए इशिका को उनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं थी। वसुधा को निवेदिता के पास छोड़कर इशिका जल्दी से मेन गेट की तरफ जाने लगी। वसुधा के विला से मेन गेट लगभग 10 से 12 मिनट की दूरी पर पड़ता है, इसलिए इशिका को थोड़ा टाइम लग गया। इशिका ने देखा राधिका वहां खड़ी खांस रही थी। उनके पास में आयशा खड़ी थी। वो जहां खड़ी थी उसके दोनों तरफ गार्डन बने हुए थे। राधिका की जो हालत थी उसमें उसे इस तरह की खांस खांस से एलर्जी थी। अगर वो थोड़ी देर और वहां खड़ी रहती तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने वाली थी। इशिका जल्दी से उनके पास गई और अपने बैग से एक दवाई निकालकर उन्हें देते हुए कहा, आप पहले ये दवाई ले लीजिए, बेहतर महसूस करेंगी। इशिका ने साथ में उन्हें पानी भी दिया जो उसने अपने बैग में रखा था। फिर इशिका ने राधिका को समझाते हुए कहा, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आयशा को लगा कि इशिका उसके खिलाफ राधिका को भड़का रही है, तो वो तुरंत आगे आई और बोली, अगर तुम्हें मेरी मॉम की इतनी ही चिंता है तो जाकर राजवंश फैमिली से बात करो। बड़ी दादी के साथ तुम्हारी अच्छी खासी बनती है, उन्हें बोलो कि मेरी और नक्श की शादी करवाएं। राधिका ने तुरंत आयशा को डांटते हुए कहा, इससे इशिका का कोई लेना देना नहीं है, इसे इस मामले से दूर रखो। इशिका जवाब में कुछ कहती उससे पहले राधिका ने उससे कहा, हाँ जानती हूँ तुम भी आदर्श की बेटी हो, लेकिन इस मामले से खुद को दूर रखो बेटा। आयशा का मामला किसी तरह मैं देख लूंगी, तो तुम्हें इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब राधिका ने इशिका को आदर्श की बेटी कहा तो अचानक इशिका के सीने में दर्द होने लगा। वो सच्चाई जानती थी। उसने सख्ती से कहा, मैं आदर्श की बेटी नहीं हूँ।